Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
एक आम आदमी भी शब्द का श्रवण कर सकता है. शब्द श्रवण की योग्यता माने केवल आपके कान का अच्छा होना है. बस आपके दोनों कान ठीक हैं, आपके अंदर श्रद्धा है नहीं, इसे कोई मतलब नहीं है. आपको गीता सुना देंगे तो आपको सुनने को मिलेगी. आप नहीं मानते वो बात अलग है, लेकिन आप धीरे धीरे मान भी लेंगे. धीरे धीरे मान्यता पैदा हो जाती है. आप धीरे धीरे मानने लगते हैं. इस आदमी के स्वभाव के लिए महात्मा जी बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते थे. ये गांव के लोग क्या करते हैं, नए बछड़े को जब बैल बनाना होता है ना, बैल बनाना पड़ता है, बैल पैदा नहीं होता है. बैल बनाना पड़ता है, पहले तो सांड होता है वो, और उसके बाद उसको बैल बनाना पड़ता है. किसान उसको धीरे धीरे बैल बनाता है, बहुत धीरे 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 हाथ फेरेगा पीठ पर, फिर धीरे 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 उसकी गर्दन पर जुआ रखेगा, और उसके बाद ऐसा वो बैल बनता है बेचारा. अभ्यास. मानवीय मन की यही तो दशा है. सत्संग के श्रवण करते ही तुरंत हमारा मन मानता नहीं है. जप करने के लिए बैठे हैं, हमारा मन मानता नहीं है, न जप में न ध्यान में न निधिध्यासन में, और कई बार श्रवण में भी हमारा मन नहीं लगता है. लेकिन इस मन को बैल बनाना पड़ता है, इस मन को बैल बनाना पड़ता है धीरे 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 धीरे, जप ध्यान साधना, और उसके बाद फिर अपने आप ये मन इस चीज को बहुत सरलता से लेता है, फिर मानने लगता है. मन हमारी बात मानने लगता है, पहले पहले नहीं मानेगा. शब्द धीरे धीरे हमारे अंतर मन में प्रवेश कर अंतर चेतना को जगाते हुए उस आत्म तत्व तक पहुंचा देता है. इसलिए शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है. इसलिए हम लोग शास्त्र की रक्षा करते हैं, बहुत त्याग करके बलिदान करके भी शास्त्र की रक्षा करते, क्योंकि शास्त्र शब्द हैं, उस महापुरुषों की अनुभूतियां हैं, अमूल्य हैं, अमूल्य धरोहर है हमारे लिए. आत्म तत्व को जानने का इससे और कोई बड़ा उपाय है ही नहीं. इसलिए दुनिया में ऐसा कोई आपको धर्म नहीं मिलता है जिस धर्म में धर्म ग्रंथ ना हो. ऐसा दुनिया में कोई धर्म नहीं मिलेगा जहां शब्द ना हो. हर धर्म ने सबसे पहली कोई चीज स्वीकार की, शब्द, और ये ग्रंथ हैं. ग्रंथ जो है ना शब्दात्मक, इसलिए हम लोग बोलते शास्त्र की रक्षा करना है. साधु महात्मा लोग बोलते भैया शास्त्र की रक्षा करना है, शास्त्र की रक्षा करना है. एक बार कहते कि जापान जा रहे थे, यहां से हिंदुस्तान से बौद्ध भिक्षु, और वो प्रचार करने के लिए जा रहे थे, धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और उनके नाव में बहुत सारे ग्रंथ थे, बहुत से ग्रंथ थे. हवा आई, तूफान चलने लगा, और नाव में इतना बोझ था, वजन था, नाव हिलेरे लेने लगे, और नाविक ने बोला कि अब इसमें ज्यादा बोझ हो गया, कम करना पड़ेगा, कि ज्यादा हिलोरे ले रही है, कम करो, वजन कम करो. उस नाविक ने बोला कि यहां जो बहुत सी पुस्तकें हैं, बोले कम करो, फेंको, समुद्र में फेंको, जीवन अमूल्य है, इसको बचा लो, ये पुस्तकें बाहर कर दो. बौद्ध भिक्षु ने कहा यह संभव नहीं है. बोले हमारे जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान ये पुस्तकें हैं, हम बौद्ध भिक्षु को पैदा कर सकते हैं. यदि ये पुस्तकें जीवित रही तो हम लाखों बौद्ध भिक्षु को पैदा कर सकते हैं, लेकिन आदमी ग्रंथ पैदा नहीं कर सकता है। बोले कोई भिक्षु ग्रंथ पैदा नहीं कर सकता है। उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि एक एक करके हम सब मारे जाएं भले ही, लेकिन हम इन पुस्तकों का त्याग नहीं कर सकते। अंतिम यही हुआ। एक बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं छलांग लगाता हूं, अपने शास्त्र की रक्षा करने के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। एक भिक्षु गया और उसके बाद फिर नारायण दूसरा तीसरा, कई बौद्ध भिक्षुओं ने अपने शास्त्र की रक्षा करने के लिए छलांग मार दी। कुछ बचे और वो अंतिम जापान में जाकर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। कितना बड़ा त्याग मालूम पड़ता है ये शास्त्र की रक्षा करना। इसलिए हम लोग बार बार आप लोगों को बताते हैं, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, स्वाध्याय की परंपरा। स्वाध्याय की परंपरा शास्त्रीय रक्षण की परंपरा है। आप सुबह बैठते हैं ना, हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज, वो कहते थे प्रस्थानतरी का पाठ करो। अंतर मन की व्यथा थी वो, शास्त्र के रक्षण के अंतर मन की व्यथा। वो कहते थे कि सब लोग पाठ करो, गीता का भाष्य के साथ पाठ करो, प्रस्थानतरी का पाठ करो, शास्त्र का रक्षण। यदि शास्त्र आपके हाथ में है तो आपका धर्म आपके हाथ में है, और शास्त्री आपके हाथ में नहीं तो आपके हाथ में क्या है? फिर आत्म तत्व को, धर्म तत्व को जानने का सबसे बड़ा माध्यम आपका शब्द है, शास्त्र है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए बालक नचिकेता ने कहा वद वद, ऐसा बोला है। बोले मौन से मत कहना, आप चुप होके तत्व का उपदेश मत करना, इशारे से भी तत्व का उपदेश नहीं करना। बोले वद कहो, आप जब कहेंगे तो ये शास्त्र बनेगा ना। तत्वज्ञ महापुरुष की जो भाषा है वही तो शास्त्र है। वो जो बोलता है वो शास्त्र बन जाता है, जो बोलता है वो शास्त्र बन जाता है, जो शास्त्र होता है वो नहीं बोलता। ध्यान देना, वो क्या रटी रटाई चीज थोड़ी बोलता है। वो शास्त्र तो उसके जीवन की अनुभूति है। और जब अनुभूति की बात बोलेगा तो क्या वो याद किया हुआ क्रम से बोलेगा? वो तो अनुभूति उनकी होगी, और वो इतनी सजीव अनुभूति होगी, उनके वो शब्द इतने सजीव होंगे कि आपको भी ध्यान दिया होगा, कई बार उलटवाने भी बहुत विचित्र सी मालूम पड़ती हैं। कई महापुरुषों ने ऐसा बोला कि अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण उसको मंत्र बोलते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं। एक बार की बात है, मजेदार बात सुना, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता हूं, सौरीलिक दृष्टांत के बारे में नाम नहीं बताऊंगा, किसी की आलोचना करना हो तो नाम नहीं बताना चाहिए, प्रशंसा करनी हो तो धूमधाम से नाम लेना चाहिए, लेकिन मैं तो प्रशंसा भी कर रहा हूं। एक बार इलाहाबाद के कुंभ में हम गए तो एक महात्मा के दर्शन करने के लिए, एक मचान लगा हुआ था और उस मचान के ऊपर वो बैठे थे। 100-200 लोग आसपास उनके दर्शन करने के लिए खड़े थे। हम लोग गए, एक वैष्णव साधु थे हमारे साथ, वो ही ले गए थे, और वहां नीचे हम खड़े हुए और प्रणाम जैसे किया, वो बोलने लगे वो कुछ, और वो जो बोल रहे थे हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसे हा हा ही हु 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 हे हे हो हो हो, बोले समझ में आया? हम बोलते महाराज समझ में नहीं आया। अरे बोले मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? फिर उन्हें बोला हु हु ही हा हा हु हु, खूब बोला उन्होंने। फिर बोले समझ में आया? हमने कहा महाराज समझ में नहीं आया। अब हम हंस भी रहे थे, बहुत जोर की हंसी भी आ रही थी, ऐसी बोल रहे थे हा हा ही हु हु। फिर समझ में आया? बोले नहीं समझ में। अरे बोले हमारी भाषा क्यों नहीं समझ में आ रही? फिर अंत में उन्होंने बोला हा हा ही हु, मैं ही हूं। बोले समझ में आया? हमने कहा थोड़ा थोड़ा समझ में आया। पूरा समझ में नहीं आ रहे? बोले क्यों नहीं आया? हा हा ही हूँ, अरे मैं ही हूँ। बोले देवरा बाबा हूँ मैं। हमने कहा हाँ आप समझ में आ गया। तो आप उनके जो कोड वर्ण हैं, उनकी जो भाषा है वो आप कैसे समझेंगे, लेकिन वो अपने अनुभूति में जो भी बोलते हैं ना वो हमारे लिए शास्त्र हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं बीज मंत्रों का अर्थ क्या है, अब बीज मंत्रों का कोई अर्थ नहीं है। जो महापुरुषों के अंतर मन की वाणी जब अनुभूति करने के बाद वो आनंद वो उत्सव जिन शब्दों में प्रकट हुआ और वही बीज मंत्र बन गए, वो जो बोलते नारायण वो शास्त्र हो जाता है। एक महात्मा थे बनारस में, जो पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी सुनाते थे, ये सत्य घटना है। इधर चंबल के किनारे कोई साधु रहते थे और उनके पास जो भी जादू गाली देते थे वो, बस कोई रोटी लेके जाए गाली देना शुरू कर देते थे। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहां बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग श्रद्धावान हैं, भले गाली दे लेकिन भिक्षा ले जाए रोटी ले जाए बाबा खाओ पानी, भले गाली दे लेकिन ये रोटी खा लो ये जल पान करो। एक भगत था एक और बड़ा श्रद्धावान, वो उनके पास जाता भले गाली खाए डंडा खाए, और बाबा तो मस्त रहते थे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, जहां बैठे बैठे पेड़ के नीचे रहते थे, एक झोपड़ा बना हुआ था। वो भगत गया एक दिन, महात्मा ने देखा फिर आया, बोले फिर आया और वो रोटी वही ले जाता था, गाली भी वही खाता था और महात्मा की सेवा करके चला जाता। महात्मा ने देखा आ गया, अच्छा बोले फिर आया, अरे बोले वर्षों से मैं तुमको मना करता हूं, कई बार तुमको डंडे से पीटा भी गाली भी देता हूं। बोले फिर आ गया तू, बोले तू इतना डांटने फटकारने के बाद भी मेरे पास आते हो तो बोले चाहते क्या हो तुम। गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे बाबा उस दिन, और गुस्से में कहा कि क्या चाहिए तुमको। बोले तुमको ब्रह्मज्ञान दूं, और गुस्से में बोला ले सारे तेरे को ब्रह्मज्ञान देता हूं। गुस्से में बोला, गाली दी उन्होंने, ब्रह्मज्ञान की क्या दी गाली। जैसे बोलते रोटी भी कोई फेंक के दे देना, इसे गुस्से में गाली देते हुए उन्होंने कहा ले साले, बोले तुमको देता हूं। गुस्से में आवेश में आए और फटकार के बाबा गुस्से में चले गए, और जो भगत था वो बैठ गया, उसको ज्ञान हो गया निर्विकल्प। जो गुरु में तत्व था वो शिष्य में आ गया, और वो महात्मा जो गुरु था गायब हो, अरे बोले तुमको हो गया साले बोले ब्रह्मज्ञान, चले गए वहां से। अब वो बैठा हुआ आदमी ऐसे, गांव के लोगों ने देखा वो बाबा तो चला गया, लेकिन बोले इसको क्या हो गया। अब उसको हिला डुला रहे थे लोग, क्या हुआ, गंभीर हो गया, अंदर अंदर खो गया वो आदमी, अंदर चला गया वो। अब कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, विकार नहीं, आंखों से अश्रु बह रहे थे केवल। एक ही शब्द बोला, अरे बोले बाबा ने गाली दी आज मेरे को, सही सही गाली आज दी बोले, और ऐसी गाली दी कि मेरे सारे अभिमान वासना समाप्त हो गए। बोले ऐसी गाली तुमने पहले क्यों नहीं दी हमको, वर्षों तक तुमने कैसे तड़पाया मेरे को, अहो भाग्य। अरे इतना सिद्ध पुरुष है नारायण, उन्होंने केवल समझ गए, ऐसी घटना अवतार मेहर बाबा की भी है। एक यहूदी धर्म की या तो पारसी कोई था, पारसी था शायद, छोटे से बच्चे थे, और एक कोई माई थी, कोई ऐसी पगली टाइप की घूमती थी, वो पगली टाइप ऐसी घूमती रहती थी, और अवतार मेहर बाबा अपने मां के साथ कहीं जा रहे थे कि बाजार सब्जी ले, और वो माई आई पगली सी, सब लोग पागल ही समझते थे उसको, और आकर के उसने कहा कि बेटा तो बड़ा अच्छा है, लो लो और गोद में लिया, उसकी मां रोक भी रही थी। अब ऐसे कोई चलते फिरते आदमी को अपना बच्चा थोड़ी देगा कोई। और उसने जबरदस्ती कस के पकड़ा और उसके माथे को चूमा उसने, और चूम के चली गई वो। और जैसे ही चूमा, और मेहर बाबा बार बार जहां चूमा था बार बार यूं यूं कर रहे थे वो। मां ने कहा क्या हुआ? और बोले पता नहीं क्या किया उसने, पता नहीं बोले क्या किया। मां ने कहा हुआ क्या तुमको? और ये पता नहीं यहां खींच रहा है मेरा, और ऐसा खींचा नारायण, उस मां ने चूमा नहीं, वो कोई सिद्ध महिला थी, और उसने देखा ये बालक बहुत महान बनने वाला है, और स्पर्श दीक्षा दी उसने चलते चलते। अब वो सारा मन उसका एक जगह पर आ जाता, आज्ञा चक्र बैठ जाते थे। घरवाले बहुत समझाते, घरवालों को लगा कि मानो उसने कोई जादू कर दी हो, कोई जादू तो ना किया होगा उसके ऊपर। बहुत परेशान थे घरवाले। अंत में नारायण वो दूसरे महात्माओं के पास ले जाने लगे, बाबा को किसी ने जादू कर दिया, किसी माए ने जादू कर दी। अब वो कौन जादूगर होगा वो जादू को दूर करने वाला? अब उसी लेवल का आदमी हो। शिरडी आए, फिर साई बाबा थे शिरडी में। साई बाबा तो ऐसे मस्त दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है, ऐसे ही रहते थे। और जैसे बच्चों को देखा, और बाबा ने कंकर उठाया और कंकर उठा करके मारा, बस यूं पागल की तरह। मेहर बाबा के सिर में पत्थर लगा, और जैसे पत्थर लगा चेतना आ गया। बाबा ने थोड़ा धक्का दे दिया और आगे कर दिया उनको। बहुत सिद्ध पुरुष हुए मेहर बाबा, इतनी उच्च कोटि की चीजें नारायण साधकों के जीवन में आती हैं, उन्हें अपनी अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाने के लिए शब्द की भी जरूरत नहीं है। क्या किया है? पत्थर मारा वो पहुंचा दिया, थोड़ा छू दिया पहुंचा दिया। इसलिए शास्त्र जो बोलते हैं वो तो महात्मा बोलते ही हैं, लेकिन सिद्ध पुरुष जो बोलते हैं वही शास्त्र बन जाता है। भगवान जो बोले वो शास्त्र बन गया, हमारे ऋषि जो बोले वो शास्त्र बन गया है, हमारे लिए परम प्रमाण, एक रास्ता पथ है। इसलिए बालक नचिकेता की बहुत उच्च दृष्टि है। बालक नचिकेता को मालूम है कि हमारे समाज का निर्माण करना है, सुदूर भविष्य तक इस आत्मज्ञान की धारा को बहाना है, और इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपको ऐसा इशारा मत करना, आप मौन होकर के मेरे को ज्ञान उपदेश मत करना। तो बोले वद वद, बोलो बोलो बोलो, आप मौन हो रहे हो। बोले मौन नहीं, शब्द के द्वारा वद। बहुत प्रसन्न हुए बालक नचिकेता के ऊपर, आचार्य या ब्रह्मज्ञानी हैं, बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने ज्ञानोपदेश करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहला जो उपदेश है तदे तत्थ ओम इति। आप ध्यान देना, ये संकेत मात्र ही है, शास्त्र जो है ना संकेत ही करता है। शब्द एक बहुत बड़ा गहरा संकेत है, और उसकी भाषा को समझना पढ़ना ये हमारी योग्यता है। बात वही है, ध्यान देना, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग है। शब्द एक हैं, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं। ऐसा होता है कि कोई कहानी मैं आपको बता दूं, और हजार लोग उस कहानी को पढ़ते हैं, लेकिन उस कहानी का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के मन पर अलग अलग पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र नाटक हजारों लोगों ने देखा, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र उसकी घटनाएं हमने भी देखी, हमने भी सुना कई बार, नाटक में, पिक्चर में पढ़ा सब कुछ, और गांधी जी ने भी पढ़ा। बाल्यकाल में गांधी जी ने भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक पढ़ देखा था, नाटक देखा था। लेकिन गांधी में क्रांति आ गई, उस बालक गांधी में क्रांति ने जन्म लिया। सत्यवादी हरिश्चंद्र को देखकर गांधी जी को लगा सत्य तो जीवन में सबसे बड़ी चीज है और मैं सत्यवादी बनूंगा। इसलिए सत्य के प्रयोग, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग करने शुरू कर दिए। एक पुस्तक भी है गांधी की, सत्य के प्रयोग। आम आदमी वो भी तो पढ़ता है, देखता है, लेकिन नारायण उसका जो प्रभाव है ना, वो बिल्कुल अपने अपने हिसाब से पढ़ते, योग्यता के अनुसार होता है। गांधी बन गया, सत्य के प्रयोग करने वाला व्यक्ति बन गया। ऐसे बहुत सारे साधु है नारायण। एक शब्द सुना, अभी आप वृंदावन में कभी जाएं तो वहां एक लाला बाबू का मंदिर है, लाला बाबू का मंदिर। वो कलकत्ता के सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे, और उन्होंने 4 बजे नौकर को बोल रखा था कि जैसे 4 बज जाए तो तुम मेरे को जगा देना। उसकी ड्यूटी थी सुबह 4 बजे समय पर, और सेठ जी को आवाज लगाता, सेठ जी समय हो गया है, सेठ जी समय हो गया है। और वर्षों तक सेठ जी उठते 4 बजे और स्नान करते, उसके बाद संध्या वंदन पूजा पाठ। बड़े धर्मात्मा थे, दानी थे, कोई खाली नहीं जाता था उनके पास। एक दिन सेठ को आवाज लगा दी मालिक ने, सेठ जी समय हो गया हो। और जैसे उन्होंने सुना समय हो गए हो, अचानक सेठ जी बाहर दौड़ते हुए आए और नौकर को बोला, अच्छा, बोले मेरा समय हो गया, मेरा समय हो गया। नौकर भी समझ नहीं पा रहा था। नौकर ने कहा, 4 बजे सेठ जी, बोले आपका समय हो गया। और लाला बाबू ने कहा कि समय हो गया मेरा, बस स्नान पूजा पाठ हुई और अपने सभी बच्चों को बुलाया, बोले बच्चों मेरा समय हो गया है। पत्नी को बोला कि देखो मेरा समय हो गया। पत्नी ने कहा, बोल क्या आ रहे हो तुम? घर के सब लोग बोलने लगे, तुम बोल क्या आ रहे हो, समय हो गया, तुम क्या मरना चाहते हो, क्या अपशकुनी बात बोल रहे हो? उसने कहा, नहीं, आज मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा समय हो गया। बोले कहां का? बोले तुम्हारे बीच रहने का समय हो गया मेरा, और अब इस दुनिया में भी मेरा समय खत्म है। अब प्रभु की जो भी नारायण कथाएं होगी, जो भी जीवन होगा, वो प्रभु का होगा, समय हो गया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी संपत्ति बांट लो, हमारा हिस्सा अलग कर दो। लोगों ने, बच्चों ने बोला, ये सब तुम्हारा ही है, और तुम जाओगे तो हम नहीं जी सकते। वो पुराने जमाने की बात, माता पिता से लोग बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, नहीं, लो तुम्हारा ये हिस्सा, ये हिस्सा। और जो अपना हिस्सा था, मधु बाबू लेके आए वृंदावन, और वृंदावन में बहुत बड़े एक मंदिर का निर्माण किया। वो लाला बाबू का मंदिर बोलते, पत्थर का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। और बस वहीं ठाकुर जी की पूजा करते थे लाला बाबू। बोले प्रभु, मेरा तो समय पूरा हो गया, अब जो भी बचा है ये तुम्हारा समय है। उन्होंने अपनी वसीयत जब लिखी तो उसमें लिखा, बोले शरीर जब ये मरेगा, बोले इसको बहुत बड़े सम्मान से जलाने के लिए नहीं ले जाना। बोले शरीर है, कितना वैराग्य था उस आदमी में, शरीर के प्रति कितना वैराग्य। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं इस व्रज रज का अनुभव करता हूं, ये शरीर जो इन्हें धूल में धूसरित होता हुआ स्मशान घाट तक ले जाया जाए। और उन्होंने लिखा कि मेरे पैर में रस्सी बांध के ऊंट गाड़ी के पीछे बांध देना। क्या क्या बात लिखी उन्होंने, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बोले पैर में रस्सी बांधकर ऊंट गाड़ी के पीछे बांध दे, और कोई उठाए नहीं, हाथ नहीं लगाए, ले जाना स्मशान में, जब धूल में दूसरित होते हुए, ब्रज रज में नारायण दूसरित होते हुए स्मशान घाट में ले जाकर इसको भगवान को समर्पित कर दे। ये शब्द हैं, एक शब्द नारायण, वही शब्द हजारों बार सुना। आपको क्यों कहा जाता है सत्संग सुनो, सत्संग सुनो? आप क्या बोलते? अरे हमने दो बार गीता सुन लिया, अब क्या सुनना है? आदमी भी बड़ा समझदार है, आदमी सोचता अरे हमने रामायण कितने बार पढ़ी, अब क्या पढ़ना है? उपनिषद, अरे बोले वो कठोपनिषद तो चार बार सुन लिया, अब क्या सुनना है? नहीं, क्या पता वो लाला बाबू एक ही शब्द हजारों बार सुनता बेचारा, हजारों बार सुना और वो समय ऐसा आया कि एक ही शब्द ने उनका काम पूरा कर दिया। भगवान बुद्ध ने कितने बूढ़े लोगों को देखा होगा, अपने घर में बूढ़े लोग थे और वो बाहर के एक बूढ़े आदमी को देखा और वैराग्य हो गया, मरे हुए स्मशान घाट के तरफ ले जाते हुए व्यक्ति को देखा, उन्होंने वैराग्य हो गए, अस्वस्थ व्यक्ति को देखा वैराग्य हो गया। हजारों आप लोगों को देखे, क्या पता कौन से क्षण वैराग्य हो जाए, कौन सी बात लग जाए। इसलिए सत्संग निरंतर सुनते रहना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो बहुत पढ़ा, हमने सुना, अब क्या सत्संग करना है, छोड़ो। नहीं, अंतिम समय तक। अंतिम समय का अर्थ क्या है? जब तक ही शरीर में जीवात्मा है तब तक, अथवा जब तक ज्ञान न हो तब तक, जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो तब तक सुनते जाना है। ये शब्द कब हमारे मन को प्रभावित कर, हमारे अंतर मन में प्रवेश कर, हमारे भीतर के अज्ञान को खत्म कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसके ऊपर नारायण कोई समय सीमा नहीं है, वो कभी भी किसी भी देश में, किसी भी काल में और किसी भी व्यक्ति के द्वारा। आपका अंतर मन केवल शुद्ध होना चाहिए, वो चेतना जग जाती है। इस शब्द का महात्म्य बालक नचिकेता ने आचार्य यम के सामने प्रकट करते हुए कहा कि प्रभु आप बोलो, बोलकर ज्ञान का उपदेश करो, बड़ा सुंदर है। अभी उन्होंने क्या उपदेश किया इसका कल प्रतिपादन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ॐ 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।